भागवतसार की श्रृंखला में छठा स्कंद सत्रहवें अध्याय पर चर्चा है। इसका एक बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है, कृपया इसको दोहराइए। नारायण परः सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गापवर्ग नरकेश्व अपि तुल्यार्थदर्शिनः। नारायण परः सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गापवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थदर्शिनः। नारायण परः सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थदर्शिनः। नारायण परा, जो केवल नारायण की सेवा में रुचि रखते हैं अर्थात शुद्ध भक्त, सर्वे समस्त न नहीं कुतश्चन कहीं भी बिभ्यति डरते हैं स्वर्ग स्वर्गलोक अपवर्ग मुक्ति नरकेशु तथा नरक में अपि भी तुल्य समान अर्थ महत्व दर्शिनः देखने वाले। अनुवाद और तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। पूरी तरह से भगवान नारायण की सेवा में लीन रहने वाले भक्तजन जीवन की किसी भी अवस्था से भयभीत नहीं होते। उनके लिए स्वर्ग मुक्ति तथा नरक एक समान है, क्योंकि ऐसे भक्त ईश्वर की सेवा में ही रुचि रखते हैं। तात्पर्य यह स्वाभाविक है कि पार्वती ने पूछा हो कि भक्त इतने महान कैसे बनते हैं। अतः इस श्लोक में बताया गया है कि भक्त लोग नारायण परह होते हैं। वे जीवन की विफलताओं की परवाह नहीं करते, क्योंकि नारायण की सेवा करते हुए उन्होंने सभी प्रकार के कष्टों को झेलने की शिक्षा पाई है। उन्हें इसकी परवाह नहीं रहती कि वे स्वर्ग में हैं या नरक में, वे केवल ईश्वर की सेवा करते रहते हैं। यही उनकी श्रेष्ठता है। अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम्, वे मुक्त रूप से ईश्वर की सेवा में प्रवृत्त होते हैं, अतः वे श्रेष्ठ हैं। शिवजी ने भृत्य भृत्यानाम शब्द का व्यवहार करके यह संकेत किया है कि यद्यपि चित्रकेतु ने सहिष्णुता तथा श्रेष्ठता का यह आदर्श उपस्थित किया है, किंतु जितने भी भक्तों ने भगवान की शरण ग्रहण कर रखी है वे सभी यशस्वी या महिमामय हैं। उन्हें इसकी तनिक भी इच्छा नहीं कि वे स्वर्ग में रहकर सुखी बने। और मुक्त होकर परम तेजोमय ब्रह्म से एकाकार हो लें। ऐसे लाभ उनको नहीं भाते, वे तो भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करना चाहते हैं। ओम ज्ञान तिमिरांधस ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगनललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमाओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वशास्त्राद्धि पीयूषः सर्ववेदैक सत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैक दृक्प्रदा सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभो कलिध्वान्तोदिदादित्या श्रीकृष्णा परिवर्तिता परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षदायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते। मदेकबंधो मत्संगी मद्गुरो मन्महाधना मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमोस्तुते। असाधु साधु तदाई अति नीचोचत कर हानमुंच कदाचिन्मा प्रेमनारुत्कंठयोस्फुरा। हरे कृष्णा। तो 17वां अध्याय है जिसमें राजा चित्रकेतु के वृत्रासुर बनने का वृत्तांत है कि कैसे वो वृत्रासुर बने। परीक्षित महाराज का प्रश्न था सुखदेव गोस्वामी से कि जब उन्होंने सुना कि वृत्रासुर इतना महान भक्त मृत्यु के समय उसने भगवान का स्मरण किया, भगवान को प्रार्थनाएं अर्पण की, याचना की भगवान से कि कब मैं आपके पुनः सेवा में स्थापित हो सकूंगा, कब भक्तों का संग मिलेगा, तो परीक्षित महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने प्रश्न किया कि ये कैसे, ये जो असुर है इतना बड़ा भक्त कैसे बना। तो अब इतिहास को बता रहे हैं कि एक असुर भक्त नहीं बना, एक भक्त असुर बन गया था। तो वो भले असुर था लेकिन था वो बड़ा महान भक्त। तो उसके इतिहास को कहते हुए यहाँ सुखदेव गोस्वामी अब इस अध्याय में, उन्होंने पिछले थोड़ा इतिहास बता दिया महाराज चित्रकेतु का, पुत्र शोक में थे, अंगिरा मुनि ने उनके ऊपर कृपा की, फिर मृत्यु हो गई पुत्र की और फिर उसके बाद अंगिरा मुनि और नारद मुनि ने ज्ञान दिया और फिर उन्होंने तपस्या की और अब वो विद्याधर लोकों के राज कर रहे हैं विद्याधर लोकों में। और अब इस अध्याय में कारण बताएंगे कि क्या हुआ ऐसा कि इतनी भगवान की भक्ति, इस स्तर की भक्ति, अर्थात उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया, भगवान सामने प्रकट हुए, भगवान से उन्होंने प्रार्थनाएं अर्पण की, याचना की, भगवान ने आशीर्वाद दिया। अब इसके बाद भी कोई असुर हो सकता है? ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि जिसको भगवान के दर्शन हो जाए, महाराज चित्रकेतु स्वयं कहते हैं भगवान से कि जो आपका नाम ले लेता है वो पापों से मुक्त हो जाता है, फिर साक्षात आपको जिसने देख लिया उसके पाप कहाँ रहेंगे, अर्थात वो बिल्कुल पापी नहीं था। तो फिर क्या हुआ? तो इस अध्याय में जिसका शीर्षक है माता पार्वती द्वारा चित्रकेतु को श्राप, इसमें सुखदेव गोस्वामी उस बात को कह रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब भगवान चले गए तो जिस दिशा में भगवान गए थे, महाराज चित्रकेतु ने उसमें दंडवत प्रणाम किया और फिर विद्याधर लोकों में रहकर अब वो वहाँ के राजा की तरह आनंद लेने लगे। तो ऐसे सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि वो प्लेन में, अपना विमान में घूमा करते, विद्याधर लोक की जो भी सुविधाएं हैं उसको स्वीकार करते, और इतना ही नहीं स्त्रियों के साथ रह रहे थे। लेकिन अंत में, उस श्लोक के अंत में सुखदेव गोस्वामी बहुत अच्छी बात कहते कि स्त्रियों के साथ रहकर भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे थे। और प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं कि ये भक्त है। भक्त कभी भी भौतिक अवस्था से दूषित नहीं होता। हालांकि विद्याधर के रूप में जो भी उनको कार्य करना था वो कर रहे थे, विद्याधरों का कार्य है, या फिर स्त्रियों के साथ में महादेव लोकों में संग करना इत्यादि, उनके संग में रहना, लेकिन उस सब भोगों के बीच में रहते हुए भी वो भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे थे। तो महानता को दर्शा रहे हैं कि ऐसा मत समझिए कि क्यों महानता को बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, क्योंकि अभी अभी थोड़े समय बाद अब वो उनके एक अपराध को कहने वाले हैं, इसलिए पहले उनकी महानता को बता रहे हैं कि वो बड़े महान थे। तो क्या महानता थी? हालांकि भोगों के बीच में, ऐश्वर्य में, स्त्रियों के संग में वो रह रहे थे, लेकिन भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे थे। एक भक्त को इस तरह होना चाहिए। अगर हमारे पास ऐश्वर्य है, भगवान की सेवा में लगाएं, भगवान के कीर्तन को भूले नहीं। ऐश्वर्य नहीं है, मन है, भगवान की सेवा में लगाएं, तन को भगवान की सेवा में लगाएं, जो भी हमारे पास है वो भगवान की सेवा में लगाएं। फिर अगर हम ऐश्वर्यों से घिरे हों, भौतिकता से घिरे हों, तो भी हमें कोई कष्ट नहीं होगा अगर हमारा मन कृष्ण में लगा होगा। अन्यथा इस जगत में, विशेषतः इस कलयुग में रहना असंभव है, भक्त बनकर रहना। जैसे प्रभुपाद समझाया करते थे अजामिल की एक कथा कहते हुए, प्रभुपाद कहते हैं कि उस समय में तो एक ही अजामिल था, उसने एक दृश्य देख लिया और उसका पतन हो गया। आज तो हम लोग बाहर निकले तो कितने ऐसे दृश्य देखने पड़ते हैं, तो फिर हमारा कितना पतन होगा? प्रभुपाद कहते भक्तों का कितना पतन होगा कि एक अजामिल ब्राह्मण का पुत्र, उसने एक शूद्र शूद्राणी को आलिंगन करते देख लिया तो उसका पतन हो गया। इतना इतना पतन कि सब कुछ उसने त्याग कर सारे पाप करने शुरू कर दिए इत्यादि। तो आज जब भक्त बाहर जाते हैं तो उनका कितना पतन होता होगा, क्योंकि आज तो ये सब बड़ा स्वाभाविक हो गया है लोगों के लिए करना ये सब। अब तो लोग छुप कर भी नहीं करते हैं, सड़कों पर खुलेआम करते हैं, तो कितना पतन होता होगा। प्रभुपाद कहते हैं इसीलिए भक्तों को सदैव हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस नाम का जप करते रहना है, भगवान की शरण में रहना है, भगवान की सेवा में रहना है, भगवान का स्मरण करते रहना है, अपने आप हम उन आकर्षणों से बच सकेंगे। तो ऐसे यहाँ भी देख रहे हैं कि हालांकि विद्याधर के रूप में उन आकर्षणों के बीच में थे, फिर भी भगवान की भक्ति, भगवान का नाम ले रहे थे। ऐसे समय में एक बार अपने विमान पर उड़ते हुए सुमेरु पर्वत के एक भाग पर आए जहाँ शिव जी बैठे हुए थे, और ये बड़ा विचित्र दृश्य उन्हें देखने मिला। राजा चित्रकेतु को या उस समय विद्याधरों के राजा, क्या देखा उन्होंने? उन्होंने देखा कि शिवजी बैठे हैं और सामने बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हैं, नारद इत्यादि सब बैठे हुए हैं वहाँ पर, वैरागी ऋषि मुनि बैठे हैं, और उनके सामने शिवजी पार्वती देवी को अपनी गोद में बिठाकर उन्हें आलिंगन कर रहे हैं। ये तो हम लोग आज भी कम देखते हैं ना ऐसे, कि वैरागियों के सामने कोई बैठ कर ऐसे करे। तो चित्रकेतु ने जब ये दृश्य देखा कि ये मतलब विरोधाभास था, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति वैरागियों को प्रवचन दे रहा है, तो वैरागियों को क्या प्रवचन देगा? वैरागियों को वैराग्य के विषय में बतलाएगा कि कैसे वैराग्य अच्छा है, ये जगत खराब है, इसकी आसक्ति नहीं। लेकिन वैरागियों को प्रवचन दे रहे हैं और गोद में पार्वती को बिठाए हुए उनको आलिंगन कर रहे हैं, और वैरागी देख रहे हैं, सारे वैरागी बैठे देख रहे हैं। तो जब ये उन्होंने देखा तो स्वाभाविक उन्हें हंसी आ गई, जोर से हंस दिए चित्रकेतु महाराज की ये जो देखा, और फिर बोलने लगे, और उन्होंने इतना बोला जोर से कि सभी जो वहां बैठे थे वो सुन रहे थे, पार्वती जी ने सुना, शिव जी ने सुना। और क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा बड़े आश्चर्य की बात है, ये जो मैं देख रहा हूँ ये बड़े आश्चर्य की बात है कि वैरागियों के सामने ये शिव जी बैठे हुए हैं और उन्होंने अपनी पत्नी को गोद में बिठाया है, तो बड़े आश्चर्य की बात है। वैसे जो शिव जी हैं उन्होंने गुणगान किया शिव जी का, अपमान नहीं किया। चित्रकेतु ने कहा वैसे शिव जी जो हैं ये तो एकदम श्रेष्ठ हैं, सारे जीवों में जिन्होंने देह धारण किया है उनमें ये बहुत श्रेष्ठ हैं, लेकिन फिर भी बड़े आश्चर्य की बात है कि ये खुलेआम ऐसे कार्य कर रहे हैं, अपनी पत्नी को आलिंगन कर रहे हैं सबके सामने। और फिर वो कहने लगे कि वैसे तो शिव मतलब शुभ होता है, शिव जी का मतलब शुभ है, और शिव जी सब कुछ जहां भी वो जाते हैं उनके नाम लेने मात्र से शुभ हो जाता है, लेकिन ये बड़े आश्चर्य की बात है ऐसा क्यों कर रहे हैं, और शिव जी बड़े तपस्वी व्यक्ति हैं। चित्रकेतु कहते हैं शिव जी बहुत तपस्वी हैं, इतनी उन्होंने तपस्या की है, धीर व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी आश्चर्य की बात है कि एक निर्लज्ज व्यक्ति की तरह, चित्रकेतु कहते हैं एक निर्लज्ज व्यक्ति की तरह सबके सामने ये अपनी पत्नी को आलिंगन कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अरे अगर कोई साधारण व्यक्ति भी होता है उसे अपनी पत्नी को आलिंगन करना है तो अकेले में करता है, चित्रकेतु कहते हैं, लेकिन ये तो सबके सामने कर रहे, बड़े आश्चर्य की बात है। चित्रकेतु ने ऐसा कहा। दरअसल चित्रकेतु महाराज के कहने के कई कारण थे। अब ये अपराध माना जाए या नहीं ये प्रश्न आता है। क्या उन्होंने दक्ष की तरह शिवजी की निंदा नहीं की? दक्ष ने भी तो यही किया था, जब शिवजी आए तो सबके सामने उन्होंने कह दिया ये उन्होंने नोट कर सम्मान नहीं दिया तो ये राख लगाकर घूमने वाला व्यक्ति, इसको मैंने अपनी पुत्री दे दी, गलती कर दी, देना नहीं था, ब्रह्मा जी ने कहा इसलिए दे दी, इत्यादि इत्यादि, तो दक्ष को दंड भुगतना पड़ा। और अब यहाँ पर चित्रकेतु भी कर रहे हैं, लेकिन आचार्य समझाते हैं वैष्णव आचार्य कि चित्रकेतु ने जो ये किया और जो दक्ष ने किया था उन दोनों में अंतर है, क्योंकि चित्रकेतु ने अपराध नहीं किया, वैष्णव अपराध नहीं किया। वो जानते हैं शिव जी की स्थिति को और उन्होंने कहा कि शिव जी बड़े महान हैं, बड़े तपस्वी हैं, बड़े धीर हैं, बहुत ऊंचे स्तर पर हैं, लेकिन ये आश्चर्य की बात है, अर्थात उन्होंने शिव जी का अपमान नहीं किया कि शिव जी बड़े निर्लज्ज हैं, शिव जी ये सब बेकार काम कर रहे हैं, भोगी हो गए, नहीं, शिव जी महान है मैं मानता हूं, लेकिन ये जो चीज मैं देख रहा हूं बड़े आश्चर्य की बात है, या दूसरे शब्दों में कहना चाहते हैं केवल शिव जी ही ऐसा कर सकते हैं। तो एक दृष्टि से गुणगान कर रहे थे, दूसरा कौन व्यक्ति है जो सब लोगों के सामने अपनी पत्नी को आलिंगन कर रहा है और प्रभावित नहीं हो रहा उससे, तो केवल शिव जी कर सकते हैं। तो दरअसल वो एक दृष्टि से शिव जी का गुणगान कर रहे थे कि ऐसा काम और कोई नहीं कर सकता, एक शिव ही है जो कर सकते हैं, और दूसरी ओर उनकी इच्छा ये थी कि जो अज्ञानी लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, जो शिव जी की स्थिति को नहीं समझते हैं, वो इन चीजों को देखकर उन पर दोषारोपण लगाएंगे। देखिए वहां जो बैठे हुए जितने वैरागी थे, नारद जैसे बड़े ऋषि मुनि, वो कोई दोषारोपण नहीं लगा रहे थे, कोई उठकर कह नहीं रहा था शिव जी को क्या कर रहे हो, सब हम लोग बैठे हैं, आपको कुछ करना है तो अकेले में जाओ। क्यों? क्योंकि वो शिव जी की स्थिति को जानते हैं, कौन है शिव जी, इसलिए उन्होंने कोई दोषारोपण नहीं किया, वो सब बैठे हैं। लेकिन चित्रकेतु ने ये सोचा कि कई अज्ञानी लोग हैं और उन्होंने ये देख लिया तो वो दोष लगाएंगे शिव जी आप पर, और अगर आप पर दोष लगाएंगे तो वैष्णव अपराध हो जाएगा उनके प्रति। उन सबको वैष्णव अपराध से बचाने के लिए चित्रकेतु महाराज ने ये बात कही, ताकि कोई उनके प्रति अपराध नहीं कर दे, क्योंकि शिव जी कौन है। प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि जो बहुत शक्तिशाली लोग होते हैं उनमें दोष ढूंढना नहीं चाहिए। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं सूर्य का, कि सूर्य इतना शक्तिशाली है लेकिन वो मल मूत्र पड़ा होता है उसमें भी, उसको भी वो सोख लेता है, उसमें से पानी को सोख लेता है, स्वाभाविक है ना, मल मूत्र होता है, थोड़े दिन में धूप रहती है, थोड़े समय में वो सूख जाता है, तो सूर्य उस मल मूत्र को, पानी को उसमें से सोख लेता है, लेकिन इससे सूर्य में कोई दोष नहीं लगता। हम लोग स्पर्श करें अगर मल मूत्र को, हमें स्नान करना पड़ता है, सूर्य उसमें से पानी को खींच लेता है, उसको कोई दोष नहीं लगता। तो प्रभुपाद कहते इसी तरह जैसे सूर्य के प्रति हम दोष नहीं देते सूर्य को, अरे मल मूत्र से इसने खींच लिया, गंदा हो गया ये, क्यों? क्योंकि बहुत शक्तिशाली है सूर्य। तो ऐसे शक्तिशाली, ऐसे वैष्णवों के प्रति कभी दोष नहीं ढूंढना चाहिए, प्रभुपाद कहते हैं। और इसीलिए चित्रकेतु महाराज, हालांकि एक दृष्टि से कहा जाए कि निंदा कर रहे थे, लेकिन उनका उद्देश्य ये था कि जो अज्ञानी लोग हैं, शिव जी आपकी स्थिति को नहीं जानते कि आप कौन हैं, तो आप पर दोष लगाएंगे, इसलिए आपके लिए ये करना ठीक नहीं है, ये ऐसा मानो उनका कहना हो। तो ये कारण था चित्रकेतु महाराज का कि उन्होंने निंदा की। और एक कारण उनकी निंदा का था जो प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं कि भगवान चाहते थे कि वो जल्दी वापस आए, क्योंकि अगर वो विद्याधर बने घूमते रहेंगे, भोग करते रहेंगे, तो हो सकता है कि कभी भोगों में पड़ जाएं, हो सकता है कुछ भौतिक जगत से आसक्ति हो जाए, तो भगवान जल्दी चाहते थे कि आए, तो उन्होंने व्यवस्था कर दी। अन्यथा चित्रकेतु महाराज जैसे महान भक्त के लिए, जब नारद मुनि उनकी निंदा नहीं कर रहे हैं शिव जी की, अन्य ऋषि मुनि बैठे निंदा नहीं कर रहे हैं, चित्रकेतु को क्या अधिकार था निंदा करने का। तो ये प्रभुपाद समझाते हैं भगवान की योजना थी, भगवान चाहते थे कि जल्दी से ये निंदा करे, अपराध हो, श्राप मिले, असुर बने, मरे और मेरे पास आए। तो कभी कभी भगवान जीवन में कष्ट लाते हैं हमारी भक्ति को तीव्र करने के लिए। अन्यथा देखिए, एक भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो भगवान ने कितना गलत किया। अच्छा भला कोई विद्याधरों का राजा बना घूम रहा है, उसको जानबूझ के श्राप दिलवा दिया, असुर बना दिया, कितना गलत है। अगर हम भौतिक दृष्टि से देखें तो राजा चित्रकेतु भगवान पर दोष लगा सकते थे, मैंने इतनी भक्ति की आपकी, मैंने इतनी प्रार्थनाएं की, नारद मुनि से मंत्र लेकर आपका मंत्र किया, आपने मुझे दर्शन दिए, आपने कहा कि भक्ति होगी, और फिर आप मुझे असुर बना रहे हैं, दोष करने लगते। लेकिन भगवान की योजना देखिए, भगवान प्लानिंग कर रहे, योजना बना रहे हैं कि जल्दी से मेरे पास आए। इसीलिए हमें भगवान की योजना को स्वीकार करना चाहिए। हमारे अंदर उतनी क्षमता, उतनी बुद्धि, उतनी भक्ति नहीं है कि हम भगवान की योजना को समझ सकें कि क्यों भगवान ये कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर इतनी क्षमता है कि हम उसको स्वीकार कर सकें उनकी कृपा मानकर। तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जानेवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाग वपुर्भी विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। ये हमारे अंदर शक्ति है कि कम से कम हम उसको स्वीकार करें भगवान की कृपा मानकर। समझ में नहीं आता क्यों कर रहे हैं भगवान, क्यों कष्ट ला रहे हैं जीवन में, क्यों मुझे असुर बना रहे हैं, चित्रकेतु नहीं समझ पाए। लेकिन देखिए भगवान की योजना, वो चाहते थे जल्दी वापस आए, ज्यादा कष्ट सहन नहीं करे इस जगत में। तो इसीलिए चित्रकेतु महाराज ने शिव जी के प्रति ऐसा कह दिया कि किस तरह शिव जी ये कार्य कर रहे हैं। और इस चीज को शिवजी समझ गए। तो जब ये बोला, उन्होंने ऐसे अपमान निंदा की, तो वहां सब बैठे थे और सारे ऋषि मुनियों ने शिवजी की ओर देखा और शिवजी केवल मुस्कुरा दिए। सब उनकी ओर देख रहे हैं, शिवजी ने मुस्कुरा दिया। जैसे ही शिवजी मुस्कुराए, सारे लोग शांत हो गए। अन्यथा आप सोचिए, किसी वैष्णव की निंदा हो रही है और बाकी सारे ऋषि मुनि बैठे सुनते रहेंगे, बहुत अच्छा करते रहो, हाँ शिवजी ऐसे। तुरंत उन्होंने क्यों नहीं उठकर विरोध किया, या उठकर चले क्यों नहीं गए अगर विरोध नहीं? प्रभुपाद लिखते हैं कि वे लोग सब समझ गए कि अगर शिवजी मुस्कुरा दिए हैं तो शिवजी जान गए हैं इसके पीछे कोई रहस्य है। तो शिवजी जब इसको स्वीकार कर रहे हैं, हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम विरोध करें, वो चुपचाप बैठे रहे। अन्यथा प्रभुपाद लिखते हैं, वो सब वहां से कम उठ के जा सकते थे कि कान बंद करके चले जाते कि अरे अरे वैष्णव की निंदा नहीं सुननी है, क्योंकि शास्त्रों में ये कहा गया है। सती देवी ने ही भागवत के तीसरे स्कंद में इसको कहा है कि अगर कोई वैष्णव की निंदा सुनता है तो या तो उसको उस व्यक्ति की जीभ काट देनी चाहिए, या फिर उसको अपना देह त्याग देना चाहिए, उसको मार दे, नहीं तो अपना देह त्याग दे, नहीं तो कम से कम उस स्थान को छोड़कर चला जाए। और इसीलिए सती देवी ने अपना देह त्याग दिया कि आपको तो मैं कुछ कर नहीं सकती, आप मेरे पिता हैं, मैं अपना देह त्याग देती हूँ। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि वो लोग क्यों नहीं उठकर चले गए, क्योंकि शिवजी मुस्कुरा दिए। जिस समय दक्ष ने शिवजी के प्रति अपराध किया था, निंदा की थी, शिवजी मुस्कुराए नहीं थे, शिवजी गंभीर बैठे रहे थे। अगर उस समय मुस्कुरा दिए होते तो सारे लोग शांत हो जाते कि हाँ मतलब कुछ कारण है, एक कोई कारण नहीं था इसलिए शिवजी मुस्कुराए नहीं, गंभीर बैठे रहे, शांत बैठे रहे। वहां वर्णन है, वहां ये वर्णन नहीं कि शिवजी मुस्कुरा रहे थे, लेकिन यहां वर्णन है कि शिवजी मुस्कुरा दिए, अर्थात प्रसन्न हो गए। मुस्कुराना मतलब प्रसन्न हो गए। तो प्रसन्न हो गए तो सभी लोगों ने सोचा कुछ तो कारण है, सब शांत हो गए। तो शिवजी इस कारण को समझ गए, किस कारण को, कि ये जो चित्रकेतु ये चाहता है कि साधारण लोग मेरे प्रति अपराध ना करें। दूसरा, भगवान की योजना है, क्योंकि चित्रकेतु को वापस बुलाना चाहते हैं, तो वो शांत हुए। तो सारे शांत रहे, ऋषि मुनियों ने कुछ नहीं कहा, शिवजी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन पार्वती देवी बोलने लगी। पार्वती ने सहन नहीं किया, तो प्रश्न आता, पार्वती श्राप देने लगी। तो जब उन्हें बोलने लगी तो प्रश्न आता है कि अरे इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं बोल रहे, शिवजी नहीं बोल रहे, तो पार्वती जी ने क्यों बोला? क्या कारण पार्वती जी का बोलने का? उसके भी कई कारण हैं, पार्वती ने भी कोई अपराध नहीं किया। तो पार्वती जी ने क्या कहा? पार्वती जी ने कहा कि अरे ये अभी अभी आया हुआ बच्चा, मान लीजिए ऐसे वो कह रही हूं, ये इसको किसने अधिकार दे दिया लोगों को दंड देने का? ये कहां से इतना बड़ा ये न्यायाधीश हो गया कि अब हमारे लिए निर्णय करेगा कि हम लोग सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? और आश्चर्य की बात यह है, पार्वती देवी कहती हैं कि ब्रह्मा, चार कुमार, नारद और जितने भी बड़े बड़े देवता हैं, उनसे भी ये श्रेष्ठ हो गया। वे लोग आकर शिव जी के चरण छूते हैं, चरणों की धूल अपने सर पर धारण करते हैं, पार्वती कहती हैं, और ये चित्रकेतु इतना बड़ा हो गया, इतना महान हो गया, उनसे भी बड़ा हो गया कि ये निंदा कर रहा है शिव जी की। तो क्यों उन्होंने ऐसा कहा? श्राप भी दिया। आगे चल के पार्वती ने कहा कि इतनी इसने निंदा की है, और फिर पार्वती देवी कहने लगी कि जिसको ये शिव जी की जो निंदा कर रहा है, शिव जी तो स्वयं साक्षात धर्म है, धर्म का साक्षात रूप है शिव जी, उनमें ये दोष ढूंढ रहा है, इसको निश्चित दंड मिलना चाहिए। तो क्यों दंड मिलना चाहिए, पार्वती जी दंड क्यों देना चाहती हैं? इसके भी कई कारण हैं। पहला कारण प्रभुपाद समझाते हैं तात्पर्य में कि ऐसा प्रतीत होता है कि चित्रकेतु महाराज भगवान विष्णु के भक्त होने के कारण उनके हृदय में थोड़ा सा अहंकार आ गया था। देखिए, भक्त भी थे इतने महान, लेकिन थोड़ा सा अहंकार आ गया था, मैं विष्णु का भक्त हूं, तो इसीलिए आवश्यक था उनको दंड देना, यह अहंकार ठीक नहीं है। तो हम भक्ति के किसी भी स्तर पर क्यों ना हो, हमें यह भी अहंकार नहीं करना चाहिए कि मैं तो विष्णु का भक्त हूं और ये सारे पतित जीवात्मा है, ये शिव जी के भक्त है, गणेश के भक्त है, ये अहंकार है। तो शायद थोड़ा सा अहंकार आ गया था, इसीलिए पार्वती देवी ने दंड देने का सोचा। दूसरा कारण था, पार्वती देवी ये एक सिद्धांत स्थापित करना चाहती थी कि कोई भी व्यक्ति वैष्णवों के प्रति अपराध नहीं कर सकता, और अगर अपराध करेगा तो उसे दंड मिलेगा। इस बात को समझाने के लिए, हालांकि चित्रकेतु इतने ऊंचे स्तर पर थे क्योंकि उन्होंने वैष्णव अपराध किया, शिवजी के प्रति अपराध किया, पार्वती देवी ने ये उदाहरण सारे समाज के सामने प्रस्तुत करने के लिए कि वैष्णव अपराध करने वाले को दंड मिलता ही है, उन्होंने दंड दिया। और तीसरा कारण, वो स्वयं बोलते समय कहती हैं, तो जब अब उन्होंने कह दिया कि इसको दंड मिलना चाहिए, तो उन्होंने दंड दिया। और क्या दंड दिया पार्वती देवी ने? उन्होंने कहा, हे पुत्र, देखिए जिसको दंड दे रही हैं पहले उसको पुत्र के रूप में संबोधित करती हैं कि हे पुत्र, तुम्हें नीच योनि में, एक असुर योनि में जन्म लेना होगा। तुम असुर योनि में जन्म लो ताकि तुमने जो अपराध किया है उसका तुम्हें पता चल सके, तुम्हें पश्चाताप हो अपने अपराध का, और आगे तुम कभी ये अपराध करो नहीं, इसीलिए मैं तुम्हें ये दंड दे रही हूं। तो तीसरा कारण उन्होंने बताया, प्रभुपाद समझाते हैं कि जैसे एक माता होती है वो कभी कभी अपने बच्चे को डांटती है, तो पार्वती ने पुत्र शब्द कहकर ये संबोध समझाया कि तुम्हें मुझे दंड देना आवश्यक है क्योंकि आगे चलकर कभी तुम ये कार्य फिर ना करो। प्रभुपाद उदाहरण देते यशोदा मैया का, कि यशोदा ने भी श्री कृष्ण को दंडा छड़ी दिखाई थी, केवल यही कारण था कि अभी नहीं उसको सुधारूंगी, अभी से चोरी करता है माखन की तो बड़ा होकर चोर बन जाएगा, बिगड़ जाएगा, इसीलिए दंड छड़ी दिखा रही थी यशोदा मैया। और इसी कारण से पार्वती देवी ने ये श्राप दिया चित्रकेतु महाराज को। और जैसे ही चित्रकेतु ने ये सुना कि पार्वती ने उनको श्राप दे दिया है, तुरंत अपने विमान से नीचे उतर कर आए, दंडवत प्रणाम किया पार्वती देवी को, और हाथ जोड़कर उनके सामने वो कहने लगे कि आपने मुझे जो ये श्राप दिया है मैं इसको स्वीकार करता हूं प्रेम से, क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है ये देवताओं के द्वारा दिया गया हमारे कर्मों का फल है। चित्रकेतु महाराज कहे, तो सुख और दुख ये तो कर्मों से आता है इस जगत में। वो कहते हैं इस जगत में व्यक्ति घूमता रहता है संसार चक्र में, कभी इधर कभी उधर, कभी इस योनि में कभी उस योनि में। जैसे भगवद गीता में भी भगवान समझाते हैं कि ये जो जगत है, ये भौतिक जगत, ये केवल एक वृक्ष के समान है, अश्वत्थ वृक्ष के समान, और अलग अलग पत्तियां हैं। तो ये जीव है एक टहनी से दूसरी टहनी पर घूमता रहता है। तो चित्रकेतु महाराज बोलते हैं तो संसार चक्र है, केवल लोग घूमते रहते हैं, हम लोग इधर उधर, एक योनि दूसरी, ये सब हमारे कर्मों के कारण होता है। और फिर जहां तक सुख दुख की बात है, हार पराजय विजय की बात है, या फिर अन्य ऐसी चीजों की द्वंद्वों की बात है, तो ये सब तो थोड़े समय के लिए है, ये शाश्वत नहीं है। सुख भी आता है चला जाता है, दुख आता है चला जाता है, इसलिए उसमें हमें ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, ये तो प्रकृति के नियमों के अनुसार होता है। भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं ना कि ये जो सब हो रहा है दैव नेत्रेण, यानी सब कुछ प्रकृति के अधीन सब हो रहा है, तो इसीलिए ज्यादा चिंता नहीं। तो चित्रकेतु महाराज ने ये कहा कि ऐसे जो भी चीजें हैं वो सब शाश्वत नहीं है। तो प्रभुपाद समझाते हैं कि देखिए कितनी अच्छी तरह उन्होंने अपने इस कष्ट को सहन किया, हालांकि उनकी गलती नहीं थी, इतनी बड़ी गलती नहीं थी कि उसको दंड दिया जाता, लेकिन उन्होंने बड़े प्रेम से स्वीकार किया अपने कर्मों का फल मानकर। तो ये भक्त है, प्रभुपाद कहते हैं कि वो कभी दूसरों पर दोषारोपण नहीं करता, और इसीलिए उसका भगवान से आसक्ति उसकी बढ़ती है इस कारण से। अर्थात जब भक्त कष्टों में होता है तो तो स्वाभाविकता भगवान पर ज्यादा समर्पण करता है, भगवान के पास ज्यादा जाता है। जैसे एक बच्चा जब उसको थप्पड़ मारते हैं तो माता के पास जाता है, माँ ही मारे लेकिन माँ के पास जाता है, तो भगवान ही कष्ट दे रहे हैं लेकिन फिर जो भक्त है वो भगवान के पास ही जाता है कि भगवान की शरण ग्रहण करता है। तो भगवान से आसक्ति बढ़ जाती है कष्टों में, भक्तों के जीवन में जब कष्ट आते हैं। तो इस तरह वो कहकर चित्रकेतु महाराज कहने लगे कि भगवान जो है वो इन सब से परे हैं, सुख दुख ये भौतिक जगत उसके परे हैं, सबके लिए समान है, इसीलिए जो भी वो करते हैं सब ठीक है। और इसीलिए मैं बड़े प्रेम से आपकी इस श्राप को स्वीकार करता हूँ। प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर चित्रकेतु महाराज चाहते तो पार्वती देवी को श्राप दे सकते थे, वो भक्त हैं इतने बड़े, अगर वो चाहते तो वो श्राप दे सकते थे, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया। ठीक है, जो मेरे कर्म में लिखा है स्वीकार है, भगवान की इच्छा है। प्रभुपाद कहते हैं उन्होंने भगवान की इच्छा मानकर उसको स्वीकार किया, इसलिए विरोध नहीं किया। और फिर वो प्रणाम करके वहां से चले गए, और जब वो प्रणाम करके चले गए तब शिव जी ने बोलना प्रारंभ किया। अभी तक शिव जी शांत बैठे थे, चित्रकेतु ने कुछ कहा, शिव जी मुस्कुरा दिए, पार्वती ने श्राप दिया, शिव जी चुप बैठे रहे, चित्रकेतु महाराज ने सब बोला, शिव जी चुप बैठे रहे। और अब शिव जी बोलते हैं, और शिव जी ने सबसे पहले पार्वती को कहा, देखा भक्तों की महानता। अर्थात अभी तक शिव जी बैठे थे चुप, शिव जी ने पार्वती को रोका नहीं कि नहीं नहीं श्राप नहीं देना, ये ठीक नहीं है, इसकी कोई गलती नहीं है। शिव जी तो जानते थे गलती नहीं है, फिर शिव जी ने क्यों नहीं रोका? केवल इसलिए कि वो भक्तों की महानता दर्शाना चाहते। और जब चित्रकेतु महाराज ने ऐसा नम्र व्यवहार किया तो उस समय उन्होंने कहा, देखा भक्तों की महानता देखी, पार्वती जी को कह रहे हैं ये भक्त हैं भगवान के। अर्थात वो पार्वती को समझा रहे थे कि तुमने जो श्राप दिया है वो गलत है, तुम्हें श्राप नहीं देना चाहिए था, क्योंकि तुमने भगवान के भक्तों की महानता को नहीं समझा। वो कहते हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो किसी चीज में रुचि नहीं रखते, इस जगत में किसी चीज में उनको रुचि नहीं है। देखो तुमने श्राप दे दिया, वो आराम से स्वीकार कर लिया, विद्याधर लोक का राजा था वो स्वीकार कर लिया। तो भक्त सुख दुख किसी चीज में रुचि नहीं रखते। तो पार्वती के मन में प्रश्न आया कि इतने महान कैसे हो गए, तब इस श्लोक को वो कहते हैं शिव जी, नारायण परा सर्वे न कुतश्चन विभ्यति, स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शिनः। तो फिर इस श्लोक को वो कहते हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं उनके लिए सब समान है, नारायण परः सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति, कोई डर नहीं है उनको, कोई भय नहीं है, क्या होगा आगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ डर नहीं है, जो आ रहा है भगवान की योजना समझ के स्वीकार करते हैं। और इसीलिए स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शन, उनके लिए सब समान है, उनको आप स्वर्ग में भेज दीजिए, नरक में भेज दीजिए, मुक्ति दीजिए, कोई रुचि नहीं है उनको इस सब चीजों में, उनके लिए सब समान है। क्यों? केवल भगवान की सेवा में रुचि है, नारायण परः सर्वे। तो भगवान की सेवा में रुचि करने वाले को कहीं भी रहने में कोई भय नहीं है और कोई आसक्ति नहीं है। ऐसा नहीं स्वर्ग में चला जाता है तो स्वर्ग से आसक्ति हो जाती है, हालांकि भक्त जाना नहीं चाहते हैं स्वर्ग में, इस जगत में रहना नहीं चाहते, ना ही मुक्ति चाहते हैं। मुक्ति अर्थात जैसे इस तात्पर्य में प्रभुपाद समझा रहे हैं निर्विशेष मुक्ति, वो नहीं चाहते, कोई इच्छा नहीं। भगवान कपिल भी इसी बात को कहते हैं कि मेरे जो भक्त होते हैं वे किसी भी प्रकार की मुक्ति को स्वीकार नहीं करते, दीयमानाम न गृहणाति बिना मत सेवनम जना, मैं देता हूं तो भी ग्रहण नहीं करते। क्यों? अगर उसमें मेरी सेवा नहीं, उनको केवल मेरी सेवा चाहिए, ये मेरे भक्त है। तो देखिए सेवा का कितना महत्व है, नारायण परा होना अर्थात सदैव भगवान की सेवा में रहना। हम लोगों के लिए कभी कभी सेवा बोझ हो जाता है, कभी कोई सेवा है हमें लगता अरे क्या कितनी सेवा है, लेकिन यहाँ शिव जी गुणगान कर रहे हैं कि भक्तों का एक ही गुण है, मुक्ति को भी त्याग देते हैं अगर उन्हें सेवा नहीं मिलती है। अर्थात सेवा करते हुए ना वो स्वर्ग चाहते, ना नरक चाहते, ना मुक्ति चाहते, ना भौतिक जगत चाहते, कुछ नहीं चाहते, केवल सेवा चाहते। और भगवान कपिल कहते हैं कि सेवा नहीं हो तो सारी प्रकार की मुक्ति, सारिष्टि सालोक्यम सामिप्य सारूप्यम एकत्वमेव च, कोई भी हो दीयमानाम न गृहणाति बिना मत सेवनम जना, कोई रुचि नहीं है उनको मुक्ति में। सालोक्य भगवान के साथ रहने में रुचि नहीं है, भगवान जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करने में रुचि नहीं है। क्यों नहीं है? अगर सेवा नहीं, तो सेवा का कितना महत्व है भक्ति में, इसको समझने का प्रयास कीजिए। और हमें जो मिला है उसके महत्व को समझिए। भगवान की सेवा के लिए लोग मुक्ति को त्याग देते हैं, अर्थात कितनी श्रेष्ठ चीज है ये सेवा। और हम लोग अगर उसे बोझा समझें, या हम लोग अगर उसे बहुत बड़ा भार, या अरे क्या हो गया, अच्छे भाव से नहीं करें, तो कितना दुर्भाग्य की बात है। जो चीज हमें मिली है उसको हम ठीक से नहीं करेंगे तो फिर भगवान ले लेंगे, ये भी है। ध्यान रखिए कि आज हमें अवसर मिला है, अगर हमने सही भाव से सेवा नहीं की तो भगवान हमसे ये सेवा ले लेंगे। और सेवा लेकर हमें ऐसे बाहर करेंगे कि हम भगवान की सेवा के बाहर चले जाएंगे हंसते हंसते, ये सोच कर कि क्या देखो ठीक हो गया, बहुत अच्छा। लेकिन दुर्भाग्यशाली है वह व्यक्ति जो भगवान की सेवा छोड़कर जाकर फिर से भौतिक जगत में वही कार्य करने वाला। इसलिए बड़ा सावधान रहना चाहिए। सेवा का अवसर मिला है, अच्छी तरह नहीं करेंगे, अच्छे भाव में नहीं करेंगे, नम्र भाव में नहीं करेंगे, भगवान ये सेवा हमसे ले लेंगे और फिर दुख के का अलावा और कुछ जीवन में नहीं होगा। इसीलिए इस भाव को अच्छी तरह समझना है। तो यहाँ वही चीज वो कह रहे, नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति, कोई डर नहीं है उन्हें, कहीं चले जाए कोई आसक्ति नहीं है, सब समान है उनके लिए सारी चीजें, क्योंकि वो भगवान की सेवा में सदैव तत्पर हैं। और फिर इसको कहकर शिव जी आगे कहते हैं कि ये जो जगत में द्वंद्व हैं, लोग सुख दुख इत्यादि, ये सब केवल हमारे बंधन के कारण है, वैसे कुछ नहीं है इस जगत में, ना सुख है ना दुख है। जो परे चला गया इसके वो केवल सुखी रहता, लेकिन जो इसमें है वो भौतिक सुख भौतिक दुख ढूंढता रहता है, क्योंकि मोह में है, अज्ञान में है। शिवजी उदाहरण देते हैं कि जैसे एक हार होता है, माला होती है फूलों की, कभी पड़ी रहती है कहीं, तो लोग उसको गलती से सांप समझ लेते हैं कि ये सांप है, है नहीं वो सांप, वो तो माला है, लेकिन अज्ञान में उसको समझ लिया जाता है। तो इसी तरह वो कहते हैं कि व्यक्ति जब स्वप्न में होता है तो बहुत अच्छा है, आनंद का अनुभव करता है, लेकिन एक्चुअली वो सच्चा आनंद नहीं है। तो इसी तरह से इस जगत में जो लोग रहते हैं, वे लोग एक दूसरे के संग में आकर आनंद लेने का प्रयास करते हैं, ये सच्चा आनंद नहीं है। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, वो भगवान की सेवा में सच्चे आनंद को स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि भगवान का भक्त बनना बड़ा दुर्लभ है। शिव जी कहते हैं मैं खुद ब्रह्मा इत्यादि जो भी हैं वो भगवान को नहीं समझ सकते। शिव जी कहते हैं संभव नहीं है समझना भगवान को, भगवान की महानता को हम नहीं समझ सकते। और उसी तरह क्योंकि भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं और उनकी महानता को नहीं समझा जा सकता, इसीलिए उनके भक्तों की भी महानता को नहीं समझा जा सकता। ये जो चित्र केतु है, पार्वती को कहते हैं ये बहुत महान भक्त है भगवान का, और मैं भी महान भक्त हूं। शिव जी कहते ये भी महान भक्त है, मैं भी महान भक्त हूं। तो क्यों कहते अपने आप को महान भक्त, कोई अपना अहंकार दिखा रहे हैं? वो कह रहे नहीं, क्योंकि वो भी एक महान भक्त है और मैं भी भक्त हूं, इसीलिए भक्तों की जो कार्य है उनको तुम समझ नहीं सकते, उसको समझा नहीं जा सकता। क्यों एक भक्त ने दूसरे भक्त की निंदा कर दी, समझा नहीं जा सकता। तो इस चीज को बतलाने के लिए कह रहे हैं कि भक्त कितने महान हैं। तो इसीलिए वो पार्वती से कहते हैं कि देखो कितनी अच्छी तरह से उसने इस चीज़ को स्वीकार किया है। तो जब पार्वती को ऐसे उन्होंने ज्ञान दिया तो पार्वती समझ गईं, जो उनको आश्चर्य था, मोह था, वो उनका दूर हो गया। और फिर शिवजी को, उन्होंने शिवजी की बातों को स्वीकार किया। तो ऐसे सुखदेव गोस्वामी फिर परीक्षित महाराज को कहते हैं कि आपने जो प्रश्न किया था कि क्यों एक ये असुर कैसे भक्त हो गया, उसके बारे में मैंने आपको ये सारा इतिहास सुना दिया है। और फिर वो कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस इतिहास को एक भक्त के मुख से सुनता है, निश्चित भगवान को प्राप्त करता है। इस श्लोक, इस अध्याय के अंतिम श्लोक में, अंतिम दो श्लोकों में वो श्रुति फल देते हैं कि किस तरह इस कथा को सुनने का क्या श्रुति फल है। तो आखिरी दो श्लोकों का अनुवाद केवल पढ़ेंगे। इतिहासम इमं पुण्यम चित्रकेतुर महात्मनः। वो कहते हैं कि चित्रकेतु महान भक्त था। यदि कोई मनुष्य किसी शुद्ध भक्त से चित्रकेतु के इस इतिहास को सुने तो श्रोता भी इस संसार में अपने बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति प्रातः काल उठकर अपने मन तथा वाणी को वश में रखकर तथा श्री भगवान का स्मरण करके चित्रकेतु का यह इतिहास पढ़ता है, वह बिना कठिनाई के भगवान के धाम को चला जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न, कोई टीका टिप्पणी?